ये भी चालू है। आ जाओ भाई, थोड़े करीब आ जाओ, प्यारों करीब आ जाओ, आ जाओ, मिलकर बैठेंगे, बड़ा नफा होगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ जाओ भाई, वो हमारे भाई बैठे, आगे आ जाओ, थोड़ी सी हिम्मत कर लो, थोड़ी सी हिम्मत कर लो। हमेशा हर मजलिस में मिलकर बैठे, हम अपने घर बार को कारोबार को छोड़ा इज्तिमा में पहुँचे। अभी शैतान हमारे साथ जो लगा हुआ है तो हमारे साथ ही है, उसकी कोशिश ये है कि इज्तिमा में न जाए, लेकिन हम इज्तिमा में पहुँचते क्या, अब उसकी कोशिश ये होगी कि ये मजमे में जुड़ के न बैठे। इसलिए कि मजमे में जुड़ के बैठेगा तो ये बात को ध्यान से भी सुनेगा और उस पर अमल करने वाला बन जाएगा, मेरी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी। इसलिए शैतान पूरा हमारे पीछे लगा हुआ है। इसलिए जब भी जिस नमाज के बाद भी मजलिस हो, साथी जम कर मिल कर बैठे। जैसे रेवड़ हो और अकेले एक बकरी अलग से हो तो अकेली बकरी को भेड़िया ले जाएगा, ऐसे आदमी अपने बिस्तर पर बैठा रहेगा तो वो शैतान उचक लेगा। वो मामूली जो काम की बात आएगी, नफ़े की बात आएगी, तो फिर वो शैतान वसवसा डालकर उस मजलिस में से उठाकर बाहर ले जाएगा। इसलिए हमारे साथ वो तो लगा हुआ है। इसलिए हम ये इस बात को तय करें कि मुझे तो इस इज्तिमा में रहकर शरीयत सुन्नत को ज़िंदा करना है। अब इस मजलिस के क्या आदाब है, इसको हम बार बार सुनते आए हैं कि आदमी को मिल कर बैठना चाहिए, कि अगर ऊपर चद्दर भी डाल दी जाए तो झोल ना पड़े। साहबा इस तरीके से मिल मिल के बैठते थे। जैसे नमाज में सफ़ों में क्या कहा, सब एक गंदे से दूसरे कंधा मिलकर आदमी खड़ा रहे ताकि शैतान न घुस जाए। ला ततरो कुल फरोजार लिश शैतान, फरमाया कि नमाज में आदमी जगह छोड़ेगा तो शैतान घुस जाएगा। वैसे मजलिस में भी जहाँ ज़्यादा चौड़ी जगह होगी तो फिर वो शैतान किसी बहाने से हमें उठा के बाहर ले जाएगा। इसलिए मिलकर बैठे, जब भी बैठे मिलकर बैठे, बैठेंगे इंशाल्लाह अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون حواء تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام। محترم بزرگو دوستو, اللہ پاک نے ہمیں جو حضور پاک علیہ الصلاة والسلام جو دین لے کر آئے ہیں, اس دین میں اللہ نے پوری انسانیت کی کامیابی رکھی ہے। उसके अलावा दुनिया के असबाबों में, दुनिया की चीज़ों में हमारे लिए कामयाबी नहीं। आज हमने यहाँ धोखा खाया कि हमने दुनिया की चीज़ों में अपनी कामयाबी समझी। हमें इस धोखे से निकलना है। अगर दुनिया की चीज़ों में कामयाबी होती तो कुरान में दुनियादार लोगों के वाकियात बयान फरमाए हैं कि उनके पास दुनिया के नक्शे थे, उन नक्शों के होते हुए वो नाकाम हुए। कुरान ने हर किस्म के वाक़े बयान फरमाए हैं। वजारत के कारून का वाक़या अल्लाह ने बयान फरमाया, फिरौन का वाक़या अल्लाह ने बयान फरमाया, कौम शुएब का वाक़या बयान फरमाया, कौम लूत का वाक़या बयान फरमाया, और भी बहुत सारी कौमों के वाक़यात बयान फरमाए। ये सारे वो थे कि जिनके पास सारे दुनिया के नक्शे थे, लेकिन वो नाकाम हुए। क्यों? कि अल्लाह ने दुनिया के नक्शों में कामयाबी रखी ही नहीं। कामयाबी तो अल्लाह ने अपने दीन में रखी है। इसलिए हमें भी इस बात का यकीन बनाना है कि मेरे सारे मसाइल का हल दुनियावी ज़िंदगी में जितने मेरे मसाइल है वो, और मौत के वक्त के जितने मसाइल है वो, और मौत के बाद के जितने मसाइल, इन सब का हल अल्लाह ने दीन में रखा है। दीन के अलावा किसी चीज़ में हमारे किसी मसले का हल नहीं है। इसलिए कुरान ने यूँ फरमाया कि हर ईमान वाले को ये कहा कि पूरे पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। पूरे पूरे दीन में दाखिल होने का अल्लाह ने हुक्म दिया। या अय्युहल्लज़ीन आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुवुम मुबीन। अल्लाह ने यह हुक्म दिया कि पूरे पूरे दिन में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे। और दीन है इसी का नाम कि जितनी बातें अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हमें करने को कही उसको उसी तरीके से करना जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने को कहा, और जितने चीज़ों से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने रोका उससे अपने आप को बचाना। ये इन पूरे मजमू का नाम, करने के कामों को करना, बचने की चीज़ों से अपने आप को बचाना, इसका नाम है दीन। मा आता कुमुर रसूलु फ़खुदू। कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया जिन बातों के करने का अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने तुमको कहा उसको मजबूती से पकड़ लो, मजबूती से अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लो। और जिन चीज़ों से बचने को कहा वमा नहाकुम अन्हु फन्तहु। कुरान का जिन चीज़ों से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हमें रोका उससे अपने आप को बचाओ। ये है दीन का खुलासा इस आयत में बयान फरमाया। अब हम अपनी ज़िंदगी को देखें, कितनी चीज़ें वो है हमारी ज़िंदगियों में जिससे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हमें रोका है और हम कर रहे हैं, और बहुत सारी वो चीज़ें हमने छोड़ रखी है जिसको अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हमें करने का हुक्म दिया। इसलिए हमें अब ये सारे मुजाकरों से इसी बात को जहन नशीन करवाया जाता है कि हर ईमान वाला अपनी ज़िंदगी में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के उस्वा को, तरीके को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करें। इसलिए कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का तरीका ही आदमी को कामयाबी तक पहुंचाएगा। इसके अलावा दुनिया के जितने तरीक़े हैं वो आदमी को बर्बादी तक पहुंचाएंगे। अल्लाह पाक ने कुरान में यूँ कहा लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर तरीका और अच्छा रास्ता जिसमें कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम वाला तरीका है, वो उस्वा है चलने के लिए। इसलिए हर ईमान वाले से ये कहा, कुरान ने भी कहा और हदीसों में भी अल्लाह के भी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि आदमी अगर कामयाब होना चाहता है तो उसको दो काम करने पड़ेंगे। ईमान वाले को दो काम, एक तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करनी पड़ेगी और एक इताअत करनी पड़ेगी। ये दोनों चीज़ें उससे करनी पड़ेगी। हाँ, ये दोनों बातें हमें अपनी ज़िंदगी में दाखिल करनी पड़ेगी, एक तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की इत्तिबा और एक इताअत। हर अमल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमारी रहबरी फरमाई है, उसी के मुताबिक उस अमल को करना। अगर अमल हमने किया लेकिन हमने अपनी मर्जी से किया, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से हमें करने को कहा उस तरीके से हमने नहीं किया, तो फिर ये हमारा अमल काबिले कबूल नहीं होगा, ये हमारा अमल हमारे ऊपर रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए देखो, नमाज ये इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन है, बहुत बड़ा फरीजा है, और उसी फरीजे से आदमी के ईमानदार होने का, ईमान के होने का पता चलेगा कि ये आदमी ईमान वाला है। उस फरीजे के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यूं फरमाया, सल्लो कमा रअयतुमुनी उसल्ली, कि नमाज कैसी पढ़ो, जैसा मुझे पढ़ता हुआ देख रहे हो। ये बात बताकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हर चीज में कहा कि तुम्हारा रोजा रखना वैसा हो जैसे मैंने बताया, तुम्हारी शादी ब्याह ऐसी हो जैसे मैंने की, और तुम्हारा अपने घरों में कैसे रहना जैसे मैं रह रहा हूं, तुम्हारा आपस में मामला करना जैसे मैंने सिखाया। गोया हर चीज में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की हमें पैरवी करनी पड़ेगी। आपने जिस तरीके से हमें सिखाया उसी तरीके के मुताबिक हमें करना, खाना भी उसी तरीके से, सोना भी उसी तरीके से, हमारा रास्ते में चलना भी उसी तरीके से, मुलाकात किसी से करेंगे तो उसी तरीके से जिस तरीके से अल्लाह के भी शासन में हमें रहबरी की, यानी हर काम में हमें हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करनी पड़े। जब आदमी अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की इत्तिबा के साथ चलेगा तो उसका सबसे बड़ा नफा कुरान ये बयान फरमाता है कि हर एक आदमी जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया, जिस अल्लाह ने हमें ईमान जैसी अजीम शान दौलत अता फरमाई, ईमान से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। हाँ, ये दुनिया की जाहिरी नेमतें उसकी कोई हैसियत नहीं ईमान के मुकाबले में। हाँ, सातों आसमान और सातों जमीन से भी ज्यादा कीमती ईमान है। अल्लाह ने हमें वो ईमान अता फरमाया है। अल्लाह हर एक को ईमान नहीं देते, ये इतना बड़ा ईमान अल्लाह ने दिया अपने फजल अपने करम से हमें। तो ये हमारा जो ईमान अल्लाह ने हमें दिया है, ईमान ये हमारा ईमान देने वाला अल्लाह यूं कहता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, और मुसलमान ही अल्लाह से मोहब्बत करेगा। कौन करेगा भाई? मुसलमान ही अल्लाह से मोहब्बत करेगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाला ईमान वाला है। वल्लदीन अशद्द हुब्बल लिल्लाह, सबसे ज्यादा जो लोग ईमान लाए वो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाले। अल्लाह पाक जिस अल्लाह ने हमें इतना बड़ा ईमान दिया, वो अल्लाह हमारे बारे में ये फरमा रहे हैं कि सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाला ईमान वाला है। तो ये अल्लाह के महबूब बनने के लिए अल्लाह ने हमें एक पाकीज़ा तरीका दिया। फरमाया कि अल्लाह का महबूब बनने के लिए हर एक ईमान वाले को हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करनी पड़ेगी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, बिल्कुल अल्लाह से मोहब्बत करने का आसान तरीका अल्लाह ने बयान फरमा दिया, बिल्कुल आसान तरीका और बहुत अच्छा तरीका, आसान तरीका जिसमें नफा ही नफा है, दुनिया आखिरत का नफा ही नफा है। वो तरीका क्या बयान फरमाया कि तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, जिस अल्लाह ने हमें ईमान अता फरमाया है, जिस अल्लाह ने हमसे मोहब्बत की है, हाँ ये मोहब्बत की अलामत है कि अल्लाह ने हमें ईमान दिया। इतने बड़े अल्लाह ने, जिसने आसमान और जमीनों को पैदा किया, जिसके कब्जे में सब कुछ है, इतना बड़ा अल्लाह यूं कह रहा है कि मैं ईमान उन लोगों को अता फरमाता हूं जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं। दुनिया अल्लाह हर एक को दे रहे हैं, तो इतने बड़े अल्लाह ने जब हमसे मोहब्बत की, और फिर उस अल्लाह ने कुरान में यह ऐलान किया कि जिनको मैंने ईमान दिया है वही मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले होंगे। तो बोलो, हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जिस रास्ते से हमें मोहब्बत मिले उस रास्ते पर हमें अपने आप को डालना चाहिए और चलाना चाहिए। सही है कि नहीं? तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि मुझसे अगर तुम मोहब्बत करना चाहते हो तो तुम आकाए मदनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। आपने जैसी तुम्हारी रहबरी की हर चीज में, उसी के मुताबिक हमारा सारा ईमानियत के लाइन में, अकाइद में, मामलात में, माशरत में, इबादात में, जो पांच शोबे ईमान के हैं उन सब में हमें अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने किसी का मोहताज नहीं छोड़ा कि आदमी सुन्नत के मुताबिक कोई अमल करना चाहे और उसको दीन में रहबरी ना मिले। ऐसा हमें किसी का मोहताज नहीं छोड़ा, कोई शोबा हमारे लिए बाकी नहीं नहीं रखा जिसमें हमें अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की रहबरी ना मिल रही हो। हर जगह पर हमारी रहबरी की, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने जैसे नमाज के हमारी रहबरी की, वैसे हमें किस तरीके से अपनी जरूरत पूरा करने के लिए आदमी जब इस्तिंजा में जाता है तो वहां का भी तरीका उसे बता दिया, आदमी को थूकने तक का तरीका बयान फरमा दिया, आदमी कैसे थूके, हमें किसी का मोहताज नहीं रखा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर आए हैं उस दीन के मुताबिक अपने आप को आदमी चलाता रहेगा तो आदमी अल्लाह का महबूब बनता जाएगा। ये अल्लाह का महबूब बनने के लिए शॉर्टकट रास्ता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करे, खाने में, सोने में, कपड़े पहनने में, अपनी वजाकता में, अपनी जाहिरी शक्ल में, अपने किसी से मामला करने में, घर में रहने के एतबार से, सारी चीजों में आदमी अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करे। तो ये अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की इत्तिबा कहां पहुंचा देगी? अल्लाह तक पहुंचा देगी। इसलिए हर ईमान वाले को ये कहा कि अगर ईमान वाला तो अल्लाह का महबूब बनना चाहता है तो तुझे अपनी जिंदगी में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की इत्तिबा दाखिल करनी पड़ेगी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हर जगह पर हमारी रहबरी की है। अल्लाह के हबीब आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला से पूछा गया कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम घर में क्या करते थे, तो कहा कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हमारे साथ रहकर घर के काम में हमारा ताउन करते थे, हमारा ताउन करते थे, घर के काम में आप घर का काम करते थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जब जूता टूट जाता तो खुद से उसको सी लेते थे, कपड़ा फट जाता था तो खुद से सी लेते थे, बकरी धोने का मौका आता बकरी धोते थे, बल्कि मोहल्ले की और लोगों की बकरी आप अलैहिस्सलाम धो लेते थे। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का घर का यह हाल, और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अपने घर के हर एक के साथ भलाई के साथ पेश आते थे, अपनी बीवियों के साथ भी भलाई के साथ, और कहा कि मैं सबसे ज्यादा भलाई से पेश आने वाला हूं। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की 10 साल खिदमत की, लेकिन अल्लाह के अभी हजरत अनस फरमाते हैं कि 10 साल की मुद्दत में कभी मुझे अल्लाह के अभी अलैहिस्सलाम ने झिड़का नहीं, कभी मारा नहीं, और कभी मैंने कोई काम उल्टा सुलटा कर भी दिया तो मुझे कभी ऐसा नहीं कहा ऐसा क्यों किया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की ये पूरी जिंदगी, हम उसको अपने घरों में उसको पढ़े कि अल्लाह के हबीब साहब अपने घरों में कैसे रहते थे, आपका अपने घर वालों के साथ क्या मामला होता था, सहाबा के साथ क्या मामला होता था। कोई आदमी आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आता तो अल्लाह के हबीब साहब उसकी तरफ पूरी तवज्जो फरमाते थे, और आप अलैहिस्सलाम जब तक वो तवज्जो रखता आप उसकी तरफ पूरा तवज्जो रखते, ऐसा कि नहीं आया सामने वाला मुसाफा ले रहा आपने मुंह फेर दिया, और आप हर एक के साथ खंदा पेशानी से पेश आते थे। इसलिए तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े अखलाक है इन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम, आपके बड़े ऊंचे अखलाक थे, और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम दुनिया में जो मजबूस हुए लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, कि उम्मत में 100% अच्छे अखलाक जिंदा हो जाए, क्योंकि ये अच्छे अखलाक ही के जरिए से आदमी के दिल में और लोगों के दिल में ईमान और इस्लाम की अजमत पैदा होती है। इसलिए ये अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की ये सारी बातें हमें अपने घरों में पढ़नी चाहिए, अपने घरों में उसका मुजाकरा करना चाहिए कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम किस तरीके से खाते थे, और आप अलैहिस्सलाम ने खाने के भी सारे आदाब हमारे सामने बयान फरमाए। आदमी जब खाना खाता है और सुन्नत के मुताबिक खाता है तो वो खाना उसका इबादत बन जाता है, उसका खाना भी इबादत बन जाता है। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम खाने के वक्त में अगर कोई साथ में होता और वो उसमें कोई सुन्नत के खिलाफ बात होती तो आप फौरन उसकी तरबियत फरमा देते थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आदमी जब खाना शुरू करे तो दाहिने हाथ से खाए और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाए, अपने आगे से खाए। अल्लाह के भी शासन खा रहे थे, एक छोटी बच्ची आई और दाखिल होना शुरू कर दी, अल्लाह के भी शासन उसका हाथ पकड़ लिया, फरमाया इस हमने तो बिस्मिल्लाह पढ़ा लेकिन इसके रास्ते से शैतान हमारे खाने में शरीक होना चाहता था, इसलिए कि इस लड़की ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा। तो अल्लाह के भी शासन ने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ो। तो ये अल्लाह के भी सामने तरबियत भी फरमाई। तो बहरहाल अल्लाह के भी बलई सलातो सलाम के हमें हर चीज में रहबरी, जैसे मैंने पहले कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हुआ देख रहे हो। तो जैसे एक नमाज का हुक्म देकर अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीजों में ये कहा कि तुम्हारा खाना वैसा हो जैसा मैंने खाया, तुम्हारा सोना वैसा जैसे मैंने तालीम दी, तुम्हारा चलना वैसा जैसा मैंने चलने को कहा। बरहाल हर चीज में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आदमी पैरवी करेगा तो ये अल्लाह का महबूब बन जाएगा। तो अल्लाह के महबूब बनने के लिए आसान तरीका हर चीज में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम पैरवी करें, आपकी इत्तिबा करें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर शोबे में हमारी रहबरी फरमाई है, कोई शोबा ऐसा नहीं छोड़ा कि हम चलना चाहे और न चल सके और हमें रहबरी न मिले। इसलिए एक तो बात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा, दूसरे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत। इसलिए कि आदमी इताअत करेगा तो कामयाबी तक पहुंच जाएगा और इताअत के रास्ते से हिदायत भी आएगी। व इन तुतीउहु तहतदु, आदमी इताअत करेगा तो अल्लाह उसके सीने में हिदायत का नूर दाखिल करेंगे। हिदायत इताअत के रास्ते से आएगी, मानने के जज्बे से आदमी के सामने जब सही बात दीन की आ जाए तो आदमी को उसी के मुताबिक अपने आप को चलाना, आदमी फिर उसको अब नफसानियत की तरफ ना ले जाए और उसमें हीले बहाने ना करे। दीन की जब पक्की ठक्की बात सही बात हमारे सामने आ गई तो आदमी को चाहिए कि उसी पर अपने आप को चलाए, फिर अपने हीला बहाना करके उधर उधर जाने की कोशिश ना करे, वरना फिर ये अमल उसका सही नहीं होगा। जैसे कुरान की आयत याय्लदीना आमनुद खुलु फिस्सिल्म काफ वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुवुम मुबीन, कहा का पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इधर इधर की गलियां तलाश मत करो, इधर उधर मत भागो, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के नक्शो कदम पर मत चलो। जो काम शरीयत सुन्नत से हटा हुआ है वो दीन का काम नहीं है, वो किसका काम है, वो शैतानी काम है। शैतान ये हमारे साथ लगा हुआ है, वो हमारे हर अमल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, और अमल उस वक्त बिगड़ जाता है जब सही तरीके से हटकर उस अमल में अपनी तरफ से कोई बात हम दाखिल कर ले तो फिर वो अमल अमल नहीं रहता। फिर ये आदमी अपने अमल को गलत चीज दाखिल करने से, रस्म रिवाज दाखिल करने से, देखा देखी चीज दाखिल करने की वजह से वो अमल उसका बेकार हो जाता है। कहा वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, शैतान के नक्शो कदम पर मत चलो, इसलिए कि वो तो तुम्हारा दुश्मन है। हाँ, शैतान हमारा दुश्मन है, इसलिए आदमी जैसे अपने दुश्मन से हिफाजत करता है वैसे हमेशा आदमी चौकन्ना रहे,
दीन के काम करने में भी कि कहीं शैतान किसी रास्ते से हमारे अमल को खराब ना कर दे, इसलिए कि उसकी तो पूरी ताकत लगेगी हमारे अमलों को खराब करने की। अमल नहीं करने देगा, जब आदमी अमल शुरू करता है तो उस अमल को फिर खराब करने की कोशिश करेगा। इसलिए हर चीज में हमें अल्लाह की बात को मान के चलना है, हमें अपने आप को अपनी मर्जियात से निकालना है। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई कि एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अनुम ईमान में दाखिल हुए और वो ईसाइत में से आए थे और ईमान में दाखिल हो गए। वो अपने उस वक्त के दीन पर बड़े मजबूत थे, ईमान में दाखिल हुए तो उस वक्त उनके दिल में ये बात पैदा हुई कि उस वक्त अगले दिन में शनिचर का एहतराम था, जैसे हमारे यहाँ जुमा के दिन का एहतराम है, जैसे जुमा के फजाइल हमारे लिए बयान किए गए। जुमा में अमलों का भाव बढ़ा दिया जाता है, अल्लाह ने मुस्तकिल नमाज जुमे की नमाज अता फरमाई, फिर जुमे की नमाज की कुछ सुन्नतें अदा करने का हमें हुक्म दिया, गुसल करने का, अच्छे कपड़े पहनने का, खुशबू लगाने का, अपने सर में तेल डालने का, ये सारा जुमा के दिन का अहतमाम अल्लाह ने फरमाया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हमारी रहबरी की कि भाई जुमा के दिन के कुछ आमाल भी हमें बताए, जैसे जुमा के रात में आदमी सूरह दुखान का खुद अहतमाम करे और सूते भी पढ़े, सूरह दुखान पढ़े, जुमा के दिन में सूरह कहफ का अहतमाम करे जिसके बड़े फजाइल है, दज्जाल से फितने की हिफाजत है और आदमी जहां से पढ़ता वहां तक काबतुल्लाह तक उसका नूर पहुंचता है, सूरह कहफ के पढ़ने के बड़े फजाइल है जुमा के दिन के, जैसे इसलिए कि हमारे नज़दीक सबसे अच्छा दिन जुमा का दिन है। इसमें अल्लाह खास दुआएं भी कबूल करते हैं, एक कबूलियत की घड़ी अल्लाह ने अता फरमाई है कि बंदा जुमा के दिन में कोई यानी अल्लाह के सामने मुतवज्जे हो और आप उसी तलाश में रहे कि वो घड़ी मुझे अपनी दुआ के वक्त में मिल जाए और मेरी दुआ कबूल हो जाए। आदमी जब तलाश में रहता है, उसकी फिक्र में रहता है तो फिर अल्लाह वो घड़ी भी अता फरमा देते हैं जिसमें अल्लाह दुआ को कबूल फरमाते हैं। फिर जुमा के दिन के लिए खास अहतमाम फरमाया कि अल्लाह के हबीब अलैहि सलातो वसलाम ने यूँ फरमाया कि जुमा के दिन मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ो, इसलिए जुमा के दिन के फजाइल दुरूद शरीफ के बढ़ा दिए गए। और ख़ास तौर से एक दुरूद शरीफ कहाँ गया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी उम्मी व अला आलिही, इसको पढ़ने का हुक्म दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी उम्मी व अला आलिही व बारिक वसल्लम, कई रिवायतों में बयान फरमाया 80 मरतबा असर के बाद पढ़ने का हुक्म दिया। कितने गुना, 80 साल के गुना अल्लाह माफ़ कर देते हैं, कितना बड़ा सवाब अल्लाह फरमाते हैं। और यूँ अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुमा के दिन मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ा करो। तो आज अल्लाह ने हमें जुमा का दिन अता फरमाया है, बहुत सारे आमाल जो जुमा से पहले करने के थे बहुत से लोगों ने किए, बहुत से लोगों से छूट गए, वो आइंदा इसका ध्यान रखे कि इंशाअल्लाह आइंदा जुमा अगर हमें मिला तो इंशाअल्लाह इन सारी सुन्नतों का अहतमाम करेंगे, इन दुआओं का भी अहतमाम करेंगे और सुन्नतों की रियायत के साथ हम इंशाअल्लाह जुमा की नमाज में शरीक होंगे। बहरहाल अभी भी हमारे पास वक्त है दुरूद शरीफ पढ़ने का, तो हम कसरत के साथ खूब दुरूद शरीफ पढ़े, हमारे पास जो भी वक्त बचे तो उसमें हम खूब कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। हाँ, जो आदमी दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ता है तो उसको दुनिया के बहुत सारे नफ़े बयान फरमाए हैं हदीसों में दुरूद शरीफ के पढ़ने के, और आखिरत में तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की शफात हमें नसीब होगी। इससे बढ़कर कौन सी बड़ी बात हो सकती है कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने पर, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम कल क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करेंगे। और एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो अल्लाह की 10 रहमतें हमारी तरफ मुतवज्जे होगी, 10 गुना हमारे माफ़ होंगे, 10 दर्जे हमारे बुलंद होंगे। बड़े फ़ायदे बयान फरमाए हैं और फरमाया अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कि सबसे ज़्यादा बखील वो आदमी है कि जिसके सामने मेरा नाम आए और मुझ पर दुरूद न पढ़े। इसलिए हमें अपने हर वक्त बहुत सारी मजलिसों में हम बैठते होते हैं, वह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नाम आता है और अजान के वक्त तो अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह ये नाम आता है, उस वक्त भी आदमी को उस दुरूद शरीफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजनी चाहिए अजान का जवाब देने के बाद। बहरहाल हम गफलत में रहे, बाद मतलब आदमी अजान होती है और बातों में मशगूल होता है, हालांकि जब अजान हो जाए तो आदमी को अपनी नमाज की एक तो अजान का जवाब दे, جیسے مؤذن کہتا ہے حیّ علی الصلاح حیّ علی الفلاح کے وقت لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے گا، باقی الفاظ میں جو ہے مؤذن کہہ رہا ہے وہی الفاظ کہے گا، لیکن لا حول ولا قوۃ پڑھے گا کب؟ حیّ علی الصلاح حیّ علی الفلاح کے وقت. یہ تو اذان کا جواب دینا، پھر اذان کے بعد درود شریف پڑھ کے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ دعا پڑھنا. فرمایا آدمی جب اذان کا جواب دیتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کو سفارش ملے گی. اس لیے اس کا ہم اہتمام کریں. ہاں یہ ہے اتباع کہ اذان ہو تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ مؤذن کا جواب دو. اب اس وقت ہم اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہوئے باتیں کرتے رہے اور ہنسی مذاق کرتے رہے، یہ ایمان والے کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ کا منادی آواز دے رہا ہو اللہ کی بڑائی کی اللہ کی عظمت کی بات، اور ہم اپنے کاموں میں مشغول رہے اور باتیں کرتے رہے اور اذان کا جواب نہ دے، یہ مناسب نہیں ہے. بہرحال ایک تو اذان کا جواب دینا، دوسرا جواب یہ ہے کہ آدمی اذان سنتے ہی نماز کی تیاری کرے، اپنے آپ کو نماز کی تیاری میں لگا دے، اپنی ساری ضرورت سے فارغ ہو کر گھر سے وضو کرے، اگر آسانی ہو، نہیں ہو تو پھر مسجد میں، لیکن آدمی جلدی سے نہ مسجد کی طرف روانہ ہو اذان کے بعد. اذان کے بعد زیادہ اپنے کام کاج میں مشغول نہ رہے. حکم اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آدمی نماز کی تیاری میں لگ جائے، جیسے جمعہ کے دین کے اندر فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الى ذکر اللہ. آدمی کو فرمایا کہ جب جمعہ کے دن اذان ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی ساری تیاری نماز کی کریں، اور نماز کے لیے اپنے آپ کو جلدی سے وہاں پہنچانے کی کوشش کریں، اپنے سارے کاروبار کو چھوڑ دیں. ایسے ہر نماز کے وقت میں آدمی اذان سنتے ہی اپنی نماز کی تیاری میں اپنے آپ کو لگا لیں. بہرحال ان کے نزدیک سنیچر کا دن محترم تھا، تو ان صاحب اور اونٹ کا گوشت جو تھا پہلے دین میں حرام تھا اور اسلام نے حلال کیا، تو ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ چلو ان کا گوشت کھانا تو کوئی ضروری ہے نہیں، حلال ہے، تو جیسے پہلے مذہب میں حرام تھا اس میں حلال ہے تو دونوں پر عمل ہو جائے گا اور کھانا کوئی ضروری ہے نہیں، تو انہوں نے ان کے گوشت کو نہیں کھایا. اور جیسے جمعہ کا احترام اسلام میں ہے تو پہلے مذہب میں سنیچر کے دن کا احترام تھا، تو انہوں نے سنیچر کے دن کا احترام بھی باقی رکھا. جب یہ دو باتیں ان میں پیدا ہوئی تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اب تم نے اسلام قبول کیا ہے تو اب تمہیں پورا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے، ادھر ادھر کی گلیوں میں نہیں جانا. یہ گلیری بیان فرما دی. اب ہم سوچے ہمارے بہت سے کاموں میں ہم ایک کام سنت کے مطابق کرتے ہیں، لیکن کتنی چیزیں اندر میں داخل کر لیتے ہیں جو شریعت کی بات نہیں ہے، دین کی بات نہیں ہے. ہم اپنے شادی بیاہوں میں دیکھیں، ہم دیکھیں کہ آدمی شادی بیاہوں میں کیا کرتا ہے، رسم و رواج کو اندر میں داخل کر کے اتنی بڑی عبادت، جو شادی عبادت ہے، شادی کوئی رسم کی چیز نہیں ہے، ہاں بہت بڑی عبادت ہے. ایک عبادت تو آدمی نماز پڑھے گا 5-10 منٹ میں ختم ہو جائے گی، حج کرے گا چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، روزہ رکھے گا شام میں ختم ہو جائے گا، لیکن شادی ایسی زبردست عبادت ہے کہ آدمی نے آج یہ کہا میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا، یہاں سے لے کر موت تک، یا بیچ میں اگر کوئی معاملہ اس کا بگڑ گیا اور طلاق کی نوبت آئی، وہاں تک لمبی مدت تک کی عبادت ہے. اب یہ اس عبادت کو ہمیں شریعت کے مطابق کرنا، اور یہ عبادت جو ہے بہت بڑی عبادت ہے، اس سے بڑی خیر وجود میں آتی ہے. کئی یعنی خاندانوں کے آپس میں جوڑ کا، اولاد کی تربیت کا، دونوں خاندان کے ملنے کا ذریعہ، اور آدمی کا خود کا اپنے آپ کو حرام سے بچانے کا، اور آدمی کا اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، قرآن کا حکم ہے کہ نکاح کرو، یہ گویا اللہ کا حکم ہے، کوئی رسم کی چیز نہیں ہے نکاح. اس کو ہم عبادت سمجھے، عبادت تصور کرے. اس لیے ہر نکاح کرنے والے کو یہ چاہیے کہ پہلے سیکھ لے مسائل कि भाई मेरे माँ बाप के क्या हुकूक है, बीवी के क्या हुकूक है, औलाद के क्या हुकूक है, ससुराल के क्या हुकूक है, आपस में दो खानदान मिलेंगे तो क्या हुकूक है, मुझ पर क्या क्या जिम्मेदारी आएगी, इसको सीखे। हाँ, आज हमने दुनिया के सारे इंतजाम को शादी की तैयारी समझा, ये तैयारी उसकी नहीं है, बल्कि आदमी एक बहुत बड़ी इबादत की तरफ जा रहा है, तो अब उसको उस लाइन का इल्म हासिल करना, ये उसकी असल तैयारी है। फरमाया इबादत आज निकाह पड़ा, मौत के वक्त तक ख़त्म होगा, इसलिए फरमाया कि आदमी इसको सही तरीके से करे। बहरहाल हमारे इस निकाह के अमल में और भी जितने दीन के शोबे हैं उसमें कोई ऐसी बात दाखिल ना हो जो हमारे अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करने में, अल्लाह से करीब होने में रुकावट बने, और वो कौन सी चीज़, रस्म व रिवाजात। इसलिए हम किसी भी इबादत में, किसी भी अपने किसी भी मामले में रस्म व रिवाज को दाखिल नहीं करेंगे, हमारा हर काम शरीयत सुन्नत के मुताबिक होगा। जब आदमी शरीयत सुन्नत के मुताबिक काम करेगा तो फिर ये अल्लाह का महबूब बनता जाएगा। तो मैंने कहा, एक तो अल्लाह के भी अलैहि सलातो वस्सलाम की इत्तिबा और दूसरी इताअत। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूँ फरमाया, मेरी हर उम्मत जन्नत में दाखिल होगी मगर वो जिसने इनकार किया। तो साहबा ने पूछा, इनकार करने वाला कौन है? कहा, जो मेरी इताअत करेगा वो तो मेरा है, और जो मेरी इताअत नहीं करेगा वो इनकार करने वाला। इनकार करने वाला बयान फरमाया। इसलिए हमें हर चीज में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत, जिस काम को जिस तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें करने को कहा, उसी तरीके से उस अमल को करना। जब ये दो बातें हमारे अंदर पैदा हो जाएगी तो इंशाल्लाह हम अल्लाह के महबूब भी बन जाएंगे और हमारी दीन ब दीन दीन के एतबार से तरक्की होती रहेगी। और जब आदमी दीन में आगे बढ़ेगा तो उसको अल्लाह का क़ुर्ब मिलेगा, अल्लाह से करीब होगा, और जब आदमी को अल्लाह का क़ुर्ब मिलेगा तो फिर अल्लाह को कभी भूलेगा नहीं, वो अल्लाह को कभी भूलेगा नहीं, हर वक्त अल्लाह को याद करेगा। आज तो हम देखें हमारा कितना वक्त बग़ैर अल्लाह की याद के गुजर जाता है, इसकी वजह क्या है? हमने अपने आप को इस मेहनत पर नहीं लगाया। वरना आदमी सोच सकता है कि मुझे एक सुबहान अल्लाह पर क्या मिल रहा है, एक सुबहान अल्लाह पर जन्नत में इतना बड़ा दरख्त लग जाता है कि एक महीने तक तेज सवार एक सौ साल तक एक तेज सवार सवारी चले तो उसके साये तक नहीं पहुंच सकती। एक सुबहान अल्लाह उहद पहाड़ से भी ज्यादा वजनी, ला इलाहा इल्लल्लाह या आसमान और जमीन के खला को भर देता है, इसके एक एक बोल में कितना सवाब है। लेकिन ये क्यों कि अभी हमने अपनी जिंदगियों में सही दीन की फिक्र नहीं पैदा की और अल्लाह से करीब होने के जो रास्ते थे उसके ऊपर भी हमने मेहनत नहीं की, जिसकी वजह से हम अल्लाह को भुलाए हुए हैं। इसलिए आदमी जब अल्लाह को अल्लाह से करीब हो जाएगा तो फिर हर वक्त अल्लाह की याद के साथ ज़िंदगी गुजारेगा, और जितना अल्लाह आदमी अल्लाह को याद करेगा वो अल्लाह से करीब होता जाएगा। इसलिए अल्लाह ने कहा कि आदमी जहाँ कहीं भी हो, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار। فرمایا جو لوگ اللہ کو اٹھتے بیٹھتے چیٹ پر لے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے لیے بڑے فضائل بیان فرمائے اور یہ حکم دیا کہ ایمان والوں مجھے خوب کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو صبح شام। तो अल्लाह पाक कह भी रहे बार बार हमें कि खूब अल्लाह को याद करो। आदमी जब अल्लाह को याद करेगा तो इसके हर हर बोल पर बहुत बड़ा सवाब आखिरत में मिलेगा। इसके लिए आदत डलवाने के लिए हम सबसे ये कहा जाता है, हालांकि कोशिश तो आदमी की ये करनी चाहिए कि 24 घंटे उसकी ज़ुबान अल्लाह के जिक्र में तरोताज़ा रहे। इसलिए कम से कम हमारी आदत बन जाए, इसके लिए तीन तीन तस्बीहात हमें कही जाती है कि हमें एक तो तीसरा कलमा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, इस तस्बीह को 100 मरतबा पढ़ना, उसके जो फ़ज़ाइल है उसका इस्तेहज़ार और माने का ध्यान पैदा करते हुए इस तस्बीह को पढ़ना। जब हम इंशाल्लाह इस तस्बीह को इस अंदाज़ से पढ़ेंगे तो हमारे दिल में اللہ کی عظمت آئے گی، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، ہمارے دل اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس میں سے ایک آدمی یہ بیان فرمایا، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، کہ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر، تنہائی میں اپنا دل و دماغ ساری چیزوں سے فارغ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کا ذکر کرے گا، اور پھر اللہ کے ذکر کرتے کرتے اس کے دل پر کپکپی طاری ہو اور اس کے آنکھوں میں سے آنسو بہنا شروع ہو جائے، تو اللہ پاک کل قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جو بڑا ہولناک دن ہوگا، بڑا خطرناک دن ہوگا۔ ایسے دن میں اللہ اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آدمی کوشش کرے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی طرف پورا متوجہ رہے، اپنے ذکر کے وقت پوری توجہ اللہ کی طرف ہو، ادھر ادھر نہ ہو، چاہے مجمع میں بیٹھا ہو چاہے کونے میں بیٹھا ہو، لیکن اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو۔ ہاں، تنہائی کا مطلب یہی ہے کہ پورے ساری چیزوں سے یکسو ہو کر پورا اللہ کی طرف دھیان لگا کر، معنی کو سمجھ کر اللہ کو یاد کرے، تو پھر اس سے آدمی کے دل میں کبھی بھی تاریخ ہوگی اور اللہ آنکھوں میں سے آنسو بہ پڑیں گے۔ ایک تو ذکر ہی ہے، ذکر کی یہ کیفیت ہمیں پیدا کرنی، اتنا ذکر کرے، اتنا اللہ کو اتنا بولے، اتنا اللہ کا ذکر کرے کہ یہ کیفیت ہماری پیدا ہو۔ دوسرا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر 100 مرتبہ صبح اور شام میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اللہ خود قرآن پاک میں کہتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ کتنا بڑا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور یہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسلمان، میں اور فرشتے درود اپنی شان شان کے اعتبار سے بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درود بھیجو۔ پھر اس درود شریف پڑھنے پر ہمارے اللہ کئی دنیا کے کام بننے کے وعدے بیان فرمائے، اور آخرت میں تو بہت بڑا نفع ہوگا۔ اس لیے 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور درود شریف پڑھتے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہو، اس دین کے پہنچانے کے خاطر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی، وہ سارا منظر آپ نے جو جد و جہد کی ہمارے سامنے ہو۔ اور تیسری تسبیح استغفار کی، دین بھر میں ہم سے کتنی بھولے ہو جاتی ہے، جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں دین بھر میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، حالانکہ آپ تو معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، پھر بھی تو ہم تو گنہگار ہیں۔ اس لیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روزانہ صبح شام 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ان 3 تسبیحات کا بھی اہتمام کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، روزانہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، ہمارا کوئی دن ناگا نہ جائے قرآن شریف کی تلاوت کا۔ اور اس طریقے سے سارے کام کے مسنون جو دعائیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہے، بتائی ہے، اس کو ہم یاد کر کے موقع محل کے وقت ان دعاؤں کو پڑھیں۔ جو عام روزانہ کے جو کام ہیں، ان دعاؤں کو تو ہم ضرور پڑھیں، یہ بڑی جامع معنی دعائیں ہیں، سیدھے عرش تک پہنچتی ہے، اور یہ دعائیں قبول ہوتی ہے، جو کھانے پینے اٹھنے جاگنے کی، رہن سہن کی بہت ساری دعائیں ہیں، اس کا بھی ہم اہتمام کریں، اور روزانہ تھوڑا وقت ہم فارغ کریں دعا کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو پورا کروں گا، تو کچھ وقت دین میں 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ ہم دعا مانگنے میں فارغ کرے۔ دل نہیں لگ رہا ہے تو شروع میں آدمی کا دل نہیں لگ رہا ہے، لیکن آدمی بار بار اس چیز کو مانگتا رہے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ دل لگا دیں گے۔ ایک دعا کو دو تین مرتبہ چار، یا اسی ایک ہی دعا کو مانگتا رہے اللہ سے، تو انشاءاللہ یعنی ساری چیزوں سے کٹ کر یکسوئی کے ساتھ، یقین کے ساتھ ہم دعائیں مانگے۔ یہ دن بھر کے ہمارے اعمال ہے، اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا، اور نوافل کا بھی ہمیں اہتمام کرے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ ہم اپنے ان اعمالوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے، تو انشاءاللہ اس کے نفع ہمیں دنیا میں بھی ملیں گے، اور آخرت میں تو بڑے نفع ہمیں اللہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے سارے ساتھی اس کو کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال ان تسبیحات کی ہمیں پابندی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے معمولات، اس کے بعد آج انشاءاللہ بھی مغرب کے بعد بات ہوگی، تو ہمیں خود کو بھی جوڑ کے بیٹھنا ہے، اور مجمع جو نیا نیا آئے گا اس کو بھی ساتھ میں لے کر بٹھانا ہے۔ ہم ابھی سے اپنی ساری ضروریات سے فارغ ہو کر پہلے ہی، یعنی یعنی تخت کے قریب آ کر بیٹھنے کی کوشش کرے، ادھر ادھر کونوں میں نہ بیٹھے، جیسے پہلے میں نے کہا کہ آدمی مل کر بیٹھے، مل کر بیٹھے گا بڑا نفع ہوگا۔ اس کے لیے ابھی اپنی ساری ضرورت سے فارغ ہو کر، آدمی سے جلدی سے فارغ ہو کر آ جائے، صفوں میں بیٹھ جائے، دعائیں مانگے، درود شریف پڑھے۔ آج جمعہ کا دن ہے، القبولیت کا دین ہے، اس لیے آدمی دعا بھی مانگے اور درود شریف بھی پڑھے۔ ابھی چلتے پھرتے بھی آپ درود شریف پڑھتے ہوئے جائے، ابھی ہمارے غروب سے پہلے پہلے کا وقت ہے ہمارے پاس جمعہ کا، اس کو بھی ہم حاصل کر لیں۔ اللہ عمل کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔